द प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी आज आपको स्नेहेश एलेक्स फिलिप की एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसमें वे बताते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में लौटने लगी शांति। भारतीय सेना ने सौंपी असम राइफल्स को उग्रवाद विरोधी अभियान की कमान। वे आगे लिखते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र दशकों से उग्रवाद के चलते काफी खून खराबा देख चुका है, लेकिन आज ये क्षेत्र एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ हिंसा के मामलों में काफी कमी आई है। इसके चलते सेना ने भी अपनी जिम्मेदारी को कम करते हुए पहले से चले आ रहे उग्रवाद विरोधी अभियान की कमान अब असम राइफल्स को सौंप दी है। सैन्य सूत्रों ने द प्रिंट को यह जानकारी दी है। उग्रवाद के चरम पर रहे इस क्षेत्र में सेना के पास उग्रवाद विरोधी यानी कि CI और आतंकवाद विरोधी यानी कि CT के लिए एक पूर्ण कोर दीमापुर स्थित 3 कोर के साथ साथ कई अन्य यूनिट थी। इसका मतलब था कि 3 से अधिक आर्मी डिवीजनों को पूरी तरह से उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया था। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि असम राइफल्स के 2 डिवीजनों के अलावा 3 कोर के अपने 3 डिवीजन थे, जिससे यह भारतीय सेना में सबसे बड़ी कोर बन गई। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC की जिम्मेदारी भी उसी के पास थी। LAC पर 3 कोर रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र की सुरक्षा में लगी है। उन्होंने पहले बताया था कि 3 कोर के 1 डिवीजन के अलावा पूर्वी कमान के तहत अन्य सभी 2 कोर 33 और 4 के रिजर्व सैनिक और अन्य टुकड़ी भी उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में स्थिति में नाटकीय सुधार हुए और केंद्र को 3 राज्यों में सशस्त्र बलों विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA को वापस लेते हुए देखा गया। सेना ने क्षेत्र में CI और CT अभियानों से अपने सभी सैनिकों को लगभग पूरी तरह से वापस ले लिया है और उन्होंने पारंपरिक युद्ध की तैयारी की प्राथमिक भूमिका सौंपी गई है। अब सेना के पास CI और CT ऑपरेशन के लिए कई डिवीजन के बजाय सिर्फ 73 माउंटेन ब्रिगेड है, जिसका मुख्यालय असम के लेपुली में है। यह कुछ अन्य बटालियन लेवल की यूनिट के अलावा है, जिन्हें अभी भी जरूरत पड़ने पर इन अभियानों का काम सौंपा जाता है। 1954 के बाद यह पहली बार है कि ब्रिगेड स्तर की कोई भी आर्मी यूनिट नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में किसी भी उग्रवादी विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल नहीं है। CI और CT अभियानों की जिम्मेदारी अब असम राइफल्स के पास है। यह एक अर्धसैनिक बल है जिसे खास तौर से पूर्वोत्तर के लिए बनाया गया है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है और यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका इतिहास 1835 तक जाता है। उस समय इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। लगभग 750 पुरुषों वाले इस दल को मुख्य रूप से ब्रिटिश चाय बागानों और आदिवासी हमलावरों के खिलाफ उनकी बस्तियों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। इसके बाद अंग्रेजों की ओर से असम की सीमाओं के पार दंडात्मक अभियान चलाने की अतिरिक्त भूमिका के साथ कछार लेवी को पुनर्गठित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर फ्रंटियर फोर्स रखा गया। 1917 में बल का नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। 66,412 कर्मियों की स्वीकृत संख्या के साथ अर्धसैनिक बल, जिसे पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है, के पास पूरे क्षेत्र में 46 बटालियन तैनात है। असम राइफल्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने द प्रिंट को बताया कि असम राइफल्स हमेशा से उग्रवाद विरोधी अभियान के संचालन में शामिल रही है, लेकिन यह अभियान पूरी तरह से सेना के अधीन था। असम राइफल्स अभी भी अपनी ड्यूटी पर लगी है, जबकि सेना अब पूरी तरह से LAC पर फोकस कर रही है। सूत्रों ने बताया कि 1.5 दशक पहले सुरक्षा की स्थिति बदलने लगी थी और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के अलावा राज्य पुलिस बल और अधिक सक्षम और सक्रिय हो गए। केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों ने सेना को अपने मुख्य कार पर धीरे धीरे लौटने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने कहा कि बेहतर सुरक्षा स्थिति के चलते पूर्वोत्तर में सेना की तैनाती में बदलाव कुछ साल पहले शुरू हुआ। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर में उग्रवाद की घटनाओं में 80% की कमी आई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने हताहतों की संख्या में 75% की गिरावट देखी, जबकि नागरिकों की मृत्यु में 99% की कमी आई। नरेंद्र मोदी सरकार के तहत इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए कई उग्रवादी संगठनों के साथ शांति की ओर कदम बढ़ाए गए। पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई बातचीत में तेजी लाने पर भी ध्यान दिया गया। और यही वजह रही है कि कई संगठनों ने सरकार के साथ हाथ मिलाया और संघर्ष विराम समझौतों की ओर रुख किया। हाल ही में 15 सितंबर तक केंद्र और असम सरकार ने पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में आदिवासियों और चाय बागान मजदूरों के दशकों पुराने संकट को खत्म करने के लिए 8 आदिवासी उग्रवादी संगठनों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इन 8 संगठनों के 1182 कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा में शामिल हुए। पिछले 3 सालों में पूर्वोत्तर में केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के साथ कई समझौते किए हैं। इन समझौतों में 2019 का NLFT, 2020 में बोडो समझौता, 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता और असम मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट 2022 शामिल है। सूत्रों ने बताया कि लद्दाख गतिरोध को लेकर 2020 में LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव के बाद सेना की ओरिएंटेशन प्रक्रिया तेज हो गई। जैसा कि दीप्रिंट ने पहले बताया था, सेना ने ऑर्डर ऑफ बैटल यानी ORBAT में कई बदलाव देखे हैं। इसमें पाकिस्तान सेंट्रिक मथुरा हेडक्वार्टर एक कोर, एक स्ट्राइक कोर को उत्तरी सीमाओं पर फिर से तैनात करना शामिल था। जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में सेना की तैनाती को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। सेना के एक बड़े हिस्से को अब LAC की तरफ तैनात कर दिया गया है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और बंगाल क्षेत्र के संचालन में शामिल सेना की पूर्वी कमान के अधीन 33, 17, 3 और 4 कोर है। कुछ साल पहले तक 3 कोर पूर्वोत्तर में CICT अभियानों का नेतृत्व करते थे। एक सूत्र ने बताया कि 3 कोर को कुछ साल पहले LAC में तैनात कर दिया गया था और 21 डिवीजन CICT के संचालन को संभाला रहा था। अब इसके लिए सिर्फ एक ही ब्रिगेड है। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण पूर्वोत्तर के कई इलाकों में आफ्सपा को रद्द कर दिया गया। सरकार ने दशकों बाद 1 अप्रैल से नागालैंड, असम और मणिपुर में अशांत क्षेत्रों से आफ्सपा को कम किया। बलों की तैनाती में बदलाव के बारे में बताते हुए ऊपर उद्धृत सूत्र ने बताया कि पहले भी जब सैनिकों को CICT ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाता था तो उन्हें हमेशा दोहरे काम दिए जाते थे और अगर जरूरी हुआ तो उन्हें LAC की ओर तैनात भी किया जाता था। एक दूसरे सूत्र ने कहा, यह हालांकि योजनाएं हमेशा बनी रहती हैं लेकिन इसमें समय लगता है। LAC पर अब ज्यादा ध्यान है। सैनिकों को स्थायी रूप से चीन सीमा की ओर फिर से लगाया गया है और तैनाती को लेकर जरूरी बदलाव किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक परिस्थितियों के आधार पर पूर्वी कमान के तहत 21 और 12 पैरा स्पेशल फोर्स की दोहरी भूमिका अभी तक जारी है। 2017 में डोकलाम प्रकरण के बाद जब भारत और चीन के सैनिक लगभग 3 महीने तक गतिरोध में फंसे रहे थे, पूर्वी कमान ने नए तोपखाने और मिसाइल प्रणालियों की तैनाती के अलावा एक भारी बुनियादी ढांचे और तकनीक को भी आगे बढ़ाया। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था और LAC के दोनों तरफ सैन्य और निर्माण गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी। सिक्किम, जो सीधे तौर पर डोकलाम गतिरोध को महसूस करता था, और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करता है। फरवरी में रक्षा मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में क्रमशः 149.98 किलोमीटर और 69.46 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर लिया है। इस बीच चीन ने भी LAC के अपने पक्ष में बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाई है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के पास, जिसमें नए दोहरे भूमिका वाले गाँव शामिल हैं। द प्रिंट पॉड के इस अंक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।